नमस्कार, मैं सुमन ग्रामवाणी से, अभी मैं पीएससी हिलसा में बैठा हूँ। मेरे साथ पीएससी प्रभारी डॉक्टर सुरेश चौधरी जी बैठे हुए हैं। यूं तो प्रभारी से अनेक बार जेएमई पर चर्चा हुई, मैं अनेक बार एएनएम मीटिंग में आया और जेएमई पर चर्चा किया, प्रभारी से अनेक बार इंटरव्यू भी लिया हूँ मैं बहुत सारे मुद्दों पर। आइए प्रभारी से एक नए विषय पर बात करते हैं। वो विषय है नवजात शिशु को ठंड के समय में मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसे नवजात शिशु की मौत हो सकती है। तो आइए प्रभारी से जानने की कोशिश करते हैं कि ठंड के समय में नवजात शिशु को वो कौन सा बीमारी है जिससे उसकी मृत्यु होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो प्रभारी अपना पूरा परिचय दे।
मेरा नाम डॉक्टर सुरेश चौधरी है, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हिलसा हूँ।
सबसे पहले तो ये बताए कि नवजात शिशु कहते किसे हैं?
नवजात शिशु 42 दिन तक के जन्म से लेकर के 42 दिन तक के बच्चे को नवजात शिशु कहा जाता है।
प्रभारी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस ठंड के मौसम में किसी नवजात शिशु को वो कौन सी खतरनाक स्थिति हो सकती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए?
आजकल खास करके ठंड के समय में या आम दिनों में भी नवजात शिशु में खास करके जो कमजोर बच्चे होते हैं जिनका की जन्म 37 सप्ताह पूर्व होता है, जिसका वजन 2 किलो से कम होता है और जो कि दूध पीने में असक्षम होते हैं, उसे नवजात शिशु में कमजोर बच्चा के वर्ग में रखा गया है। ठंड के मौसम में खासकर नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है।
हाँ, तो प्रभा जी साहब बता रहे हैं कि ये ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया की बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहले मुझे ये बताए कि हाइपोथर्मिया क्या है, ये मैं इसे कैसे जान सकता है कि किस शिशु में हाइपोथर्मिया की स्थिति आ गई है?
इसमें जिस बच्चे का शरीर का तापक्रम 95 डिग्री से कम हो, है ना, उस बच्चे को हम हाइपोथर्मिक बच्चा कहते हैं। मतलब बच्चे के शरीर का या हम लोगों का शरीर का तापक्रम 98.5 डिग्री होता है, लेकिन ठंड लगने के बाद ठंड का ही लक्षण है कि जब किसी बच्चा को या सियाना आदमी अगर उसका तापक्रम 95 डिग्री से कम हो गया तो उसे हम हाइपोथर्मिक।
तो प्रभा जी ये बताया कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नवजात बच्चा हाइपोथर्मिया की स्थिति में आ गया है, तो सबसे पहले मुझे ये बताया कि उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका बचाव कैसे करेंगे?
हाइपोथर्मिया से बचाव करने के लिए बच्चे को लेयर्ड में कपड़ा पहनाना, जैसे कि हम लोग आजकल ठंड का समय आ गया है तो कोट पहनते हैं, उसके नीचे स्वेटर पहनते हैं, उसके नीचे कॉस्टूल पहनते हैं, उसके नीचे गंजी रहता है, मतलब इस तरह से 4 या 5 लेयर को इस तरह से बच्चे को 4-5 कपड़ा पहना कर करके रखना, इसको लेयर्ड में रखने कहा जाता है। दूसरा है जिसे कि बच्चे के ऊपर तापक्रम का हाइपोथर्मिया का असर ना हो। दूसरा है कि बच्चे को बचाने का एक साधन ये हो गया। दूसरा है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर में माँ कंगारू मदर केयर इसको इसलिए कहा गया है कि जैसे कंगारू के पेट में एक बैग थैला होता है जिसमें कि वो अपने बच्चे को रखती है, जिससे कि उसका तापक्रम बॉडी का बच्चे का मेंटेन रहता है। इसी के आधार पर ही कंगारू मदर केयर है। इसमें माँ को मतलब अपने शरीर का कपड़ा खोल करके, मतलब आसन के आगे का सारा कपड़ा खोल कर करके मतलब ओपन रहना है और बच्चे को भी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा और माँ जो है उसको छाती से लगा लेगी, पैर को साइड में मोड़ लेगी और हाथ को भी अंदर रखेगी, सिर्फ उसका मुंह जो है वो बाहर होना चाहिए ताकि बच्चा सही ढंग से सांस वगैरह ले सके और उसके ऊपर से बच्चे को फिर ढक लेगी, चादर से रजाई से ढक लेगी, जिससे कि माँ का तापक्रम बॉडी का तापक्रम डायरेक्ट बच्चे को मिले, इसी को कंगारू मदर केयर कहते हैं। और ये खास करके जो नवजात शिशु हैं और उसमें भी वो कमजोर बच्चे के जो श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, कि 2 किलोग्राम से जिसका बच्चा का वजन कम है, दूध पीने में उसको कठिनाई हो रहा है, 37 सप्ताह से पहले जन्म हुआ है, उस बच्चे को तो खास कर करके कंगारू मदर केयर देना ही चाहिए। और ई कंगारू मदर केयर जो है ई परिवार का कोई भी सदस्य उस बच्चे को दे सकता है, जैसा हम बता चुके हैं कि उसको छाती में सटा करके रखना है, कपड़ा हटा करके डायरेक्ट अपने स्किन के टच में रखना है, ऊपर से कपड़ा ढक कर करके बच्चे को रखना है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और बहुत ज्यादा बच्चा का डेवलपमेंट भी होता है। यही हाइपोथर्मिया से बचाव का घरेलू नुस्खा है, और उसके बाद अगर सुधार नहीं होता है तो उसको हम डॉक्टर के यहाँ, चिकित्सक के यहाँ ले जाएंगे, और उसके बाद भी जैसे रेडिएशन का होता है, रेडिएंट हीट है लिया जाता है, अपने डॉक्टर देखेंगे, जैसा परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार ही अपने पास।
धन्यवाद प्रभा जी, आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी जीविका मोबाइल वाणी को श्रोताओं को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।